लाभगिरिवरधारी गोपीजनवल्लभगिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे राधे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे राधे जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। एक सेकंड देखता हूँ, आई थिंक ये ठीक रहेगा। आई थिंक थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में आपका सबका स्वागत। तो हम अभी परसों ही जन्माष्टमी महोत्सव मना चुके हैं, तो आज हम जन्माष्टमी के बाद जो पहली लीला होती है भगवान की, कौन सी लीला है वो? सबसे पहली लीला जन्माष्टमी पूतना का वध, तो उसके बारे में, पूतना का उद्धार, तो वो पूतना उद्धार लीला की आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जो भगवान गीता में कहते हैं उसका उच्चारण करके फिर इस लीला की चर्चा करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कह रहे हैं भगवान जय श्री राधा वृंदावन बिहारी की। तो भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्म भगवान का जो दिव्य है वो जानता है, माने हमारे जैसा भौतिक नहीं है। जैसे सूर्य का उदय होता है, उदय होने से पहले भी सूर्य होता ही है, ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं था। और अस्त होने के बाद क्या नष्ट होता है सूर्य? नहीं, अस्त होने के बाद भी रहता ही है। वैसे ही भगवान पृथ्वी तल पर अवतार लेने से पहले भी होते ही हैं अपने आध्यात्मिक जगत में, और अवतार समाप्त करने के बाद जैसे सूर्यास्त हो गया उसके बाद भी तो भगवान होते ही अपने नित्य धाम में, तो ये जो ठीक से समझेगा और उनकी सारी जो लीलाएं हैं वो दिव्य समझेगा, उसको क्या होगा, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी, वापस इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर काटने के लिए उसको आना नहीं पड़ेगा। तो कहाँ जाएगा, माम एति सोर्जन, भगवत धाम चला जाएगा, भगवान की नित्य सेवा में। यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वही हमको आध्यात्मिक जगत में करने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हमने किसी विशेष रूप से भगवान की सेवा करने की इच्छा की तो वही सेवा आध्यात्मिक जगत में प्राप्त होती है। साधने भावी वो जहाँ सिद्ध देहे पायबो तहाँ राग पतेर ऐसे उपाय, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो जब भी हम भगवान की दिव्य गुण लीला इत्यादि सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक भावना उत्पन्न होनी चाहिए। क्या भावना उत्पन्न होनी चाहिए, एक तो हृदय का शुद्धिकरण होता ही है भगवान की कोई सी भी लीला सुनने से, हृदय का शुद्धिकरण होता ही है, लेकिन हृदय का शुद्धिकरण अंतिम फल नहीं है। अंतिम फल क्या है, कृष्ण की लीला सुनने का क्या अंतिम फल है, कृष्ण प्रेम या कृष्ण की सेवा करने की भावना अंदर से जगना, ये अंतिम फल है उसका। और वही भावना ही हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाती रहती है और भगवत धाम जाने के लिए हमको सक्षम कर देती है। तो आज जो हम लीला देख रहे हैं, भगवान केवल 6 दिन के हैं इसमें। जब ये 6 दिन के थे तो अभी उनका नंदोत्सव जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही नंद महाराज ने मनाया, उसके पश्चात कंस को कर चुकाने के लिए वो अपने मथुरा चले गए थे। मथुरा में वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी ने उनको सावधान किया कि गोकुल में कुछ उत्पात आ सकते हैं, क्योंकि नंद महाराज कैसे हैं, बहुत ही सीधे स्वभाव के हैं, उनको इस जगत की, जैसे हम बोलते हैं ना दुनियादारी, वो कुछ उनको पता नहीं है कैसे दुनिया चलती है, क्या छल कपट कैसे होता है वो पता नहीं है। लेकिन वसुदेव जो है वो क्षत्रिय, लीला में क्षत्रिय होने के कारण वो जानते हैं कि ये कंस अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच रहा है, भगवान कृष्ण जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, प्रभुपाद कहते हैं वो चाहते हैं कि कृष्ण भावना नष्ट हो जाए। कंस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो भगवान के खिलाफ होते हैं, भगवान के विरुद्ध होते हैं। तो चाहे कितने भी बड़े षड्यंत्र क्यों ना रचें, कृष्ण के लिए तो बड़े बड़े दानवों को नष्ट करना बाएं हाथ का खेल है भगवान के। भगवान कहते हैं मुहूर्त में मैं सारे दानवों को नष्ट कर सकता हूं, एक मुहूर्त में मैं नष्ट कर सकता हूं सारे दानवों को, लेकिन फिर भी मैं इतना सारा लीला की रचना क्यों कर रहा हूं, कितना सारा ताप झेलना पड़ा वसुदेव देवकी को, बराबर ना, कारागृह में रहना पड़ा, कंस का अत्याचार झेलना पड़ा, इतना सब करने के बाद कृष्ण ने जन्म होने को तुरंत नहीं मारा कंस को, 11 साल गोकुल में निकाले, फिर वहां से मथुरा कंस के चुनौती को स्वीकार करते हुए मथुरा में आए और फिर उन्होंने कंस का वध किया, जो वो एक क्षण में कर सकते थे उसके लिए 11 साल क्यों लगाए। बोलते मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रीड़ा, बोल रहे हैं कि जो मैं सर ये क्रिया करता हूं, क्रीड़ा करता हूं, वो सब मेरे भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, माने ये लीला रचन से भगवान दिखाना चाहते हैं। वसुदेव देव की तो नित्य सिद्ध है, नंद यशोदा भी नित्य सिद्ध माता पिता है कृष्ण के, इन उनके माध्यम से हमको बताना चाहते हैं कि साधक भक्त कैसे हमारे जीवन में संकट आते रहेंगे। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मैं अभी भक्ति करना चालू कर दिया, मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो जप करता हूँ और मैं तो अभी लीलाएं पढ़ता हूँ तो भी मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। अर्जुन साक्षात उनके मित्र हैं, क्या अर्जुन को कहते हैं कि आपने मेरे से भगवद गीता सुनी, ये जो गीता मैंने बताई आपने सुनी, अभी आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। कैसा कहा कृष्ण ने, क्या कहा अर्जुन को? संकट तो आते ही रहेंगे भैया, उसमें बस तुमको एक काम करना है। क्या काम करना है? उसमें आपको मेरी शरण लेनी है, तब सारे दुर्गों को, संकटों को आप पार कर जाओगे। कह रहे ऐसे नहीं कह रहे कि संकट आएंगे ही नहीं, ये जगत का नियम है। कृष्ण अपना बनाया हुआ नियम क्यों तोड़ेंगे? ये साधक के लिए आवश्यक है कि संकट कुछ ना कुछ आते रहे, नहीं तो क्या एक जगह पे बैठ जाएंगे। जैसे स्वर्ग में होता है कि ज्यादा संकट नहीं होते तो फिर भक्ति करने की उन एक चाह भी उनमें उत्पन्न नहीं होती, उनको आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हालांकि आवश्यकता हर एक जीव को है, हर जीव को आवश्यकता है कृष्ण की भक्ति करने की। लेकिन अर्जुन को कह रहे हैं कि संकट तो आते ही रहेंगे आपके जीवन में, ऐसा कभी नहीं होगा कि संकट नहीं रहेंगे। दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन उसमें क्या करो? मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरीश्यसी, मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो, मेरी आश्रय लो, तो ये दुर्ग नहीं आएंगे, संकट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सारे संकट को पार कर जाओगे तुम। ये सारे संकटों को पार कर जाओगे, कुछ दुख नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन सुख दुख को सहने की क्षमता तुम में आ जाएगी अगर मेरी भक्ति करोगे तो। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति में जो नए नए आते हैं वो सोचते हैं कि सारे मेरे संकट दूर हो जाए फिर मैं अच्छे से भक्ति करूंगा। पहली बात तो ऐसा कभी समय आएगा नहीं कि सारे संकट दूर हो गए। पुराने वाले दूर होंगे कि नहीं पता नहीं, नए अवश्य आएंगे और लाइन में एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक हैं। स्वास्थ्य से संबंधित, अपने संबंधों के संबंधित, या वातावरण के संबंधित, अधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक सब प्रकार के कष्ट एक के पीछे एक खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं हमको कष्ट देने के लिए। तो हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि पूरा मैं ये सबके साथ निपट लूं फिर मैं भक्ति करूंगा, ऐसा संभव ही नहीं है कभी, ऐसा कृष्ण कह ही नहीं रहे। और दूसरा, अगर मान लो हट गए तो भी भक्ति करने के लिए अपने आप अपने अपने में प्रेरणा नहीं उत्पन्न होगी। अगर मानो सारे संकट आज मुझे बता दिया किसी ने, चलो अभी से लेके आगे आपके जीवन में एक भी संकट नहीं आएगा, तो ये बड़ा संकट है असल में। क्योंकि हरिदास ठाकुर जब ही एक कारागृह को कारागृह में उनको डाला गया था ये हरिनाम जपने के कारण, तो कारागृह के सारे जो कैदी हैं वो जान गए कि ये तो बड़े वैष्णव हैं, हमारा उद्धार करने के लिए इधर आए हैं, तो उनको प्रणाम करने लगे, क्योंकि नामाचार्य है ना हरिदास ठाकुर, उनको कहने लगे कि हमें आशीर्वाद दीजिए। तो हरिदास ठाकुर उनको आशीर्वाद देते हैं, आप अभी जैसे हो जिंदगी भर ऐसे ही रहो। तो कैदी सोचने लगे कि ठाकुर जी है आशीर्वाद है कि श्राप है, हम अभी जैसे हैं मतलब अभी तो हम कैद में हैं, क्या आप चाहते कि हम जिंदगी भर कैद में रहे? तो हरिदास ठाकुर कहते नहीं नहीं आप समझे नहीं, अभी आप असहाय हैं, को बिना किसी सहायता के हैं, इसलिए आप कृष्ण का आश्रय अच्छे से पूरे हृदय के साथ आश्रय ले रहे हैं। तो यही कारागृह से बाहर निकलने का मार्ग है कि कृष्ण की आश्रय लेना। अगर आप मान लो बहुत सुव्यवस्था में रहेंगे तो भक्ति की अव्यवस्था हो जाएगी आपकी। ऐसे भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं जो सुव्यवस्था में रह के भी असहाय रूप से भगवान की शरण लेते हैं। अम्बरीश महाराज बड़े धनी हैं, राजा हैं, उनके भी जीवन में भगवान देते ही हैं उनको संकट हमको सिखाने के लिए। वे तो सब परीक्षाएं पास करके पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में जो प्रश्न डालते हैं वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में संकट तो आते रहेंगे, तो ये सारी लीला करके भी कृष्ण हमको बता रहे हैं, अरे वसुदेव देवकी इतने सारे ताप झेलने पड़े उनको, बाद में जब भी वृंदावन में थे तो ऐसा नहीं कि हर दिन उत्सव था, उत्सव तो था ही व्रजवासियों के लिए, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ असुर आता था, कुछ ना कुछ परेशान करता था, कुछ ना कुछ होता ही रहता था सदैव। तो ये किसका उत्तर है? ये हमारे प्रश्नों का उत्तर है कि मैं भक्ति कर रहा हूं फिर भी संकट क्यों आ रहा है। बोले अरे भैया कृष्ण ने कहा ही नहीं कि संकट नहीं आएंगे करके, पहले तो हमारा एजम्पशन ही गलत है, हमारा गृहीतक ही गलत है कि कृष्ण ने कहा ये संकट आवश्यक है। जो संकट हमारे जीवन में आ रहे हैं वो संकट आवश्यक संकट हैं। किस लिए आवश्यक हैं? जिससे हम भगवान की शरण लें, भगवान की आश्रय लें। और भगवान क्या गारंटी देते हैं? रक्षिष्यति इति विश्वासो, मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी। मत प्रसादात तरिष्यसि, तुम पार हो जाओगे। मा शुचः, चिंता मत करो। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जैसे मैं कह रहा हूं करो, मेरी शरण लो, मैं तुमको सब पापों से मोचन कर दूंगा। तो इसमें कह रहे हैं हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि आपका जो पाप मोचन का भार मैंने ले लिया, जो भी मेरी भक्ति कर रहा है, मेरा शरण ले रहा है, आपका पाप मोचन का भार मैंने ले लिया, आपका संसार मोचन का भी भार मैंने ले लिया, आपका मत प्रापण भार मतलब मुझे पाने का भार भी मैंने ही ले लिया, इतना तो क्या, प्रतिज्ञा से मैं कह रहा हूं आपका देह व्यवहार का भार भी मैंने ले लिया, अभी आपको क्या टेंशन है? आपको बस आपको मेरी भक्ति करनी है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन यही करना है आपको बस। आप ये टेंशन लो, बाकी का टेंशन मैं लेता हूं और आप संसार का टेंशन लो, फिर उसी में फिर पक जाएंगे हम संसार के चिंता में। संसार से चिंता तो हर जन्म में करते आए हैं, हम संसार की चिंता ही करते आए हैं, तो उसका फल क्या मिला हमको? संसार के फल की चिंता का फल है संसार और कृष्ण की चिंता का फल है कृष्ण की चिंता जो चिंता सबसे बड़े सुख से भी अधिक है। सदैव व्रजवासी कृष्ण की चिंता में ही मग्न है। यशोदा मैया सदैव सोचती है अरे मेरे कृष्ण को कुछ होगा कि नहीं हो कुछ, तो चिंता तो हमको लेनी है, लेकिन किसकी चिंता लेनी है? वही हमको चयन करना है, चुनाव में वही चुनाव करना है हमको कि संसार की चिंता करनी है कि कृष्ण की सेवा की चिंता करनी है। तो जैसी चिंता होगी वैसे चिंतन होगा, जिस प्रकार की चिंता होगी हमारी उस प्रकार का चिंतन होगा, और जिस प्रकार का चिंतन होगा उस प्रकार की गति मिलेगी हमको। तो नंद महाराज सोच रहे हैं कि वसुदेव ने कहा कि गोकुल में कुछ उत्पात आ सकते हैं, कुछ संकट आने वाला है, तो तुरंत आप गोकुल की ओर पधारिए। तो नंद महाराज गोकुल की ओर प्रयाण करते हैं और यहां क्या होता है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चका चचार निघ्नंती पुरग्राम व्रजादिषु। कंस ने अपने कुमंत्रियों की मंत्रणा सुनकर ये निर्णय ले लिया कि पिछले 10 दिन में जो जो बालक बालिकाएं जन्म लिए हैं उनको सबको मारेंगे, क्योंकि वो देवी ने आकाशवाणी में और स्वयं घोषणा की थी कि अरे मुझे मारने वाला कहीं तो जन्म ले चुका है, तो कुछ तो बंदोबस्त करना होगा। तो ऐसा उसने पूतना को आदेश दिया, पिछले 10 दिन में जो जो कुछ जन्म लिया है सबको आप मार दो। तो कह रहे हैं हमारे आचार्य इधर, शिशुंश चचार निघ्नंती पुरग्राम व्रजादिषु। तो कह रहे हैं परीक्षित महाराज यहां पे अचानक डर गए, अरे हमारे कृष्ण को तो कुछ हानि नहीं पहुंचागी ये पूतना? तो कह रहे नयत्र श्रवणादीनी रक्षोघ्नानी स्वकर्मसु कुर्वंती सात्वताम भर्तुर यातु धान्यश्च तत्र ही। बोलते हैं ये पूतना जैसे यातु धानी निगेटिव एलिमेंट्स उधर ही अपना प्रभाव दिखा सकते हैं जहां पे निर्व्यलिक भाव से हरिनाम संकीर्तन नहीं किया जाता, श्रवण आदि नहीं मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण जहां पे भक्ति का अवलंब नहीं किया जाता, वहीं इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव उधर ही है और किधर उनका प्रभाव नहीं है। फिर जहां पे साक्षात कृष्ण है जिनके नाम श्रवण इत्यादि जहां पे होता है वहां पे
उसका प्रभाव नहीं है, तो साक्षात कृष्ण के ऊपर कौन प्रभाव डाल सकता है? तो परीक्षित महाराज आप चिंता मत कीजिए। तो उसमें हमारे आचार्य कहते हैं कि व्रज के एक भी बालक को पूतना स्पर्श नहीं कर पाई, क्योंकि व्रज में तो सारे ही वैष्णव हैं। तो कंस के जो अनुयायी थे उनके बालकों को मारा पूतना ने। तो मूर्ख कंस ऐसा था कि अपने ही अनुयायी के बच्चों को मरवाया उसने, जो असुरी स्वभाव के थे उन्हीं के बच्चे, असुरी स्वभाव के जो थे उनके असुरी स्वभाव के बच्चे वही मर गए पूतना से। तो एक असुर ने दूसरे असुर को मारा, बस और कुछ नहीं हुआ। आगे कहते हैं कि सा खेचरी एकदा उपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माया आत्मानम प्राविशत कामचारिणी। कामचारिणी कह रहे हैं अपने मन के हिसाब से कहीं पे भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, कोई भी रूप धारण कर सकती है। पूतना का रूप कौन सा है मालूम है आपको? ओरिजिनल असुर का, असुर का रूप, असुर रूप में वो उलूकी कहा है, उलूकी उल्लू के रूप में है। लेकिन रूप कौन सा धारण करती है, मतलब बहुत कामचारिणी होते हैं तो उनके बहुत सारे रूप होते हैं। एक तो बहुत बड़ी राक्षसी का भी रूप है, एक उलूकी का भी रूप है उसका, और ये तीसरा रूप उसने धारण कर लिया जो एकदम सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। तो कह रहे हैं कि अपने, जैसे क्या कहते हैं, अदा कहते हैं, अपने अदाओं से उन्होंने सारे गोकुलवासियों का मन हर लिया। उनकी जैसे सुंदर युवती की चाल, उनकी सुवर्ण रंग वर्ण कांति और जो परिधान की हुए अनेक वस्त्र माल्य आभरण, आंखों के इशारे, इससे क्या सबका मन हरण हुआ। तो कह रहे व्रजवासी तो सच्चिदानंद विग्रह है उनका कृष्ण की तरह, तो फिर उनका मन ये जगत माया भी हरण नहीं कर सकती, तो ये चुटपुट माया ने कैसे हरण कर लिया? तो कह रहे हैं हमारे आचार्य कि ये केवल लीला शक्ति ने संभव करा दिया ताकि पूतना की एंट्री हो, नहीं तो कुछ रोल ही नहीं, वो स्टेज पे आई और कुछ कर ना पाई तो ड्रामा आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए जो ड्रामा डायरेक्टर है उसी ने ये अरेंजमेंट किया कि सारे जो ये व्यवस्था की कि सारे जो गोकुलवासी हैं वो भ्रमित हो गए। वैसे तो उनको जगन माया भी भ्रमित नहीं कर सकती, हाँ ब्रह्मा जी को विमोहित करने वाली माया भी व्रजवासियों को विमोहित नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे एक छोटी माया का एक छोटा अंश पूतना वो भ्रमित कैसे कर पाई, तो केवल लीला शक्ति ने अनुमति दी। इसलिए आगे देखिए क्या कहते हैं, तो अपने स्मित हास्य से कटाक्षों से इधर उधर देखती हुई सीधा नंद महाराज के घर में चली गई। तो कहते हैं कि जैसे सारे व्रजवासियों ने, जो सारे कृष्ण के प्रेमी है, उन्होंने अनुमति कैसे दी उसको जाने को? कोई भी नया कोई आता है तो हम थोड़ी किसी को ऐसे ही प्रवेश देते हैं किसी के घर में। तो अनुमति इसलिए दी क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद से नंद महाराज के घर पे जो नारायण की उपासना होती है तो वो नारायण को मिलने के लिए लक्ष्मी आई है शायद से। तो ऐसा सोचकर उन्होंने अनुमति दी। फिर पूतना वहां पर पहुंच गई और उन्होंने देखा कि जो पलंग है उसके ऊपर कृष्ण निद्रित अवस्था में है। असल में पूतना को देखकर वो अपनी आंखें मूंद देते हैं, बंद कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे कोई अग्नि भस्म के नीचे रहता है, दिखता नहीं है लेकिन उठाएंगे तो हाथ जल जाएगा, वैसे ही ये साधारण शिशु की तरह दिख रहे हैं लेकिन कुछ करने जाएंगे तो कयामत आ जाएगी। तो ये उसको पता नहीं था। या फिर पहले के जमाने में जो तलवार रखते थे वो किसमें रखते थे? एक चमड़े का एक क्या रहता था, मयान रहता था उसमें, वो रखते थे तो ऊपर से वो कैसा लगता था, नरम नरम लगता था लेकिन अंदर से अत्यंत तीक्ष्ण। तो वैसे ही पूतना नहीं पहचान पाई कि ये साक्षात भगवान है, किसके साथ हम पंगा ले रहे हैं। तो कहते हैं कि जैसे कोई एक रज्जु समझकर सांप को पकड़ लेता है, तीसरी उपमा दी है, रज्जु समझकर, रज्जु माने रस्सी समझकर कोई सांप को पकड़ लेता है, वैसे पूतना क्या कर रही है, कृष्ण को अपनी गोद में ले रही है। निमीलित क्षणा, चराचरात्मा निमीलित क्षणा, आंखें बंद कर दी है कृष्ण ने। क्यों आंखें बंद कर दी, बहुत सारे कारण बता रहे हैं हमारे आचार्य। पहला कारण बता रहे हैं कि अरे इस अवतार में भी सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ेगा। पिछले अवतार में, राम अवतार में सबसे पहले किसका वध किया था, रामचंद्र, ताटका का, जो एक स्त्री थी, इस जन्म में वापस। तो इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर दी। पूतना का दुष्ट स्वभाव और दुष्ट देह को ना देखूं मैं, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर दी। दुष्टों को हमको नहीं देखना है, दुस्संग नहीं करना है। इसलिए हमारे वेदों में भी ऐसे वचन है, ओम भद्रम श्रुणयाम कर्णे भी, हम कान से केवल सुंदर वचन सुने, साधु वचन सुने, कोई इधर उधर की जगत की बात या दुष्ट तमोगुण रजोगुण की बात ना सुने। आंखों से दर्शन करें, केवल संतों का दर्शन करें, हम सुस्वभावी साधुओं का दर्शन करें, असाधु का दर्शन नहीं चाहिए, असाधु के साथ वार्ता नहीं करनी है, और असाधु की वार्ता सुननी भी नहीं है, और असाधु का स्मरण भी नहीं करना है, उनके स्मरण से भी हमारा हृदय अपवित्र हो जाता है। सोचिए कोई भी असाधु के बारे में सोचिए, तुरंत उसके गुण के बारे में सोचेंगे, मतलब दुर्गुण, और वो जो करता है उसके बारे में सोचेंगे, जो दुष्क्रिया असत्क्रिया करता है उसके बारे में सोचेंगे, ये सब सोचेंगे तो हमारा हृदय में क्या आएगा, वही सारा जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव हमारे हृदय पे हो जाएगा उसका। इसलिए कह रहे कि असत का स्मरण नहीं करना है, उनकी वार्ता नहीं करनी है, उनका दर्शन भी नहीं करना है। और किसका दर्शन करना है, साधु का, संतों का दर्शन करना है हमको, उन्हीं की वार्ता सुननी है, उन्हीं का स्मरण करना है, उन्हीं की सेवा करनी है। बहुत सिंपल है, कृष्ण हमको बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, यही तो वैष्णव आचार है। अत्तता दुस्संग उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, दुस्संग को त्याग कर हमको सत की सुननी है, दुस्संग को त्याग कर। क्यों? क्योंकि संत एवा से छिंदंती मनोव्यासंग मुक्तिवीर, संत ही केवल हमारे हृदय की जो अनादि जन्मों से संचित वासनाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? उक्ति भी अपने वचनों से, बार बार कोई संत हमको सुनाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, सारे उनके अनुयायी आचार्य वृंद हैं, उनके वाक्य, महान वैष्णव हैं, उनके वाक्य जब हम सुनेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय का मार्जन होगा उससे। इतने सारे दुष्कर्म, पाप, अनर्थ, जो इतने सारे जन्मों से हमारे हृदय में बैठकर, वही तो हमारे पीड़ा का कारण है। सारे पीड़ा की जड़ क्या है? हमने ही किए हुए कुकर्म, उसी को कौन भगा देता है? संत एवा से छिंदंती मनोव्यासंग उक्ति भी, पता है कि मैं गलत कर रहा हूं फिर भी हम वो गलती कर बैठते हैं, वो किसके कारण कर बैठते हैं? पुराने कुसंस्कार के कारण। तो कुसंस्कार कैसे हटेंगे? हाँ, जैसे कोई हार्ड डिस्क होती है, उसमें सब गंदा गंदा, कुछ कुछ गंदी फिल्में, गंदी सब गंदा गंदा भर के रखा है, तो वो कैसे हटेगा? जब कुछ नया आप डालोगे उसमें, तो पहला सारा हट जाएगा, उसमें से रीराइट हो जाएगी, वो सीडी पूरी रीराइट हो जाएगी। तो ऐसे ही जब साधुओं से हम सुनते हैं तो हमारे हृदय के, हमारे चित्त का मार्जन हो जाता है। तो आगे कह रहे हैं, फिर क्यों आंखें बंद कर दी उन्होंने, कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर दी, और कारण बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि उसको मारते समय उसका चेहरा, उसका मुख जो हो जाएगा विकृत, वो मेरे से देखा नहीं जाएगा, इसलिए भगवान अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। सदगुणी भगवान सारे गुणों के आकर है, तो वो मारते समय भी पुतना को नहीं देख सकते, इसलिए पुतना की को देखकर ही उन्होंने आंखें बंद कर दी। और एक कारण बताते हैं कि ये अभी हरिसूरी नाम के कवि हैं, वो एक कुछ कारण बता रहे हैं, तो ये कविता के रूप में, उसको काव्य के रूप में समझिएगा, बिल्कुल उसको सिद्धांत के रूप में समझने का कोशिश मत कीजिए, ये काव्य है एक। तो कह रहे हैं कि चंद्र और सूर्य जो हमारी आंखों को नियंत्रण करते हैं, चंद्र और सूर्य है ना, तो वो जैसे देखते हैं कि कृष्ण पुतना की ओर देखने वाले हैं, तो चंद्र सूर्य कहते हैं ये तो इतनी पापी है कि हमारे आंखों, अगर बाई आंख से देखा तो उसको चंद्र गति मिल जाएगी, दाई आंख से देखा तो उसको सूर्य गति मिल जाएगी, इसलिए हम भगवान की आंखें, दोनों आंखें बंद करवा देते हैं ताकि हमारे हमारे लोक में ये ना आ जाए। ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए ये काव्य के रूप में समझिए, कृष्ण की आंखों को चंद्र सूर्य नियंत्रित नहीं करते, तो सिद्धांत के रूप में उसको मत समझिए, काव्य के रूप में समझिए उसको। तो फिर आगे कहते हैं कि पूतना का एक नाम है बकी, क्यों? क्योंकि बकासुर की बहन है इसलिए। और कृष्ण की आंखें किस कैसी है? परमहंस की तरह है, परमहंस की तरह है। तो अगर कोई हंस है तो वो बकी को कैसे देख सकता है? हंस बगुले को थोड़ी देखता है, हंस तो बाकी हंसों को देखते हैं। तो कृष्ण की आंखें हंस की तरह है तो वो बगुले को कैसे देखेंगे? कोई असत चीजों के कैसे देखेंगे? जैसे कोई कौवे की प्रवृत्ति है, उसको कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, उसको आप पूरी दुनिया के व्यापार के बारे में समझाओ तो उसमें उसकी अत्यंत रुचि है, बहुत सारे व्यूज मिलेंगे आपको, मिलियन व्यूज फॉर दैट। लेकिन कृष्ण कथा के बारे में आप देखो, कृष्ण कथा उसमें थोड़ी देर में उनको लगता है कि अरे ये क्या है, ये हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जैसे हंस प्रवृत्ति के हैं वो बाकी हंसों को देखेंगे, बगुले के प्रवृत्ति के हैं तो उनके बाकी या कौवे के प्रवृत्ति के हैं तो उनमें कचरा में ही रुचि है। तो आगे कह रहे हैं कि और क्यों आंखें मूंद दी उन्होंने, आंखें क्यों बंद कर दी? इसलिए बंद कर दी क्योंकि जैसे कहते हैं कि कुछ संकट आए तो आंखें बंद करके सहन करना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ संकट आता है तो आंखें बंद करके सहन करना चाहिए, इसलिए यहां पे भी देख रहे हैं कि कृष्ण आंखें बंद करके ये संकट को सहन कर रहे हैं। फिर वो कृष्ण को दूध पिलाने जा रही है, दूध के बहाने विष पिलाने जा रही है, लेकिन कृष्ण फिर भी ग्रहण कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने की हुई पिछली सारी कामनाओं का रिकॉर्ड कृष्ण रखते हैं। तो जब भी बलि को छल करने के लिए वामन देव आए थे तो वामन देव के बटु रूप को देखकर बलि की जो बहन है रत्नावली, उसने सोचा कि अरे कितना सुंदर बालक है, इसको मैं दूध पिलाऊंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब भी बलि के सारे राज्य से लेकर संपत्ति से लेकर सब कुछ छीन लिया, तभी उसने सोचती अरे कितना दुष्ट बालक है, इसको मैं जहर पिलाऊंगी। तो फिर कृष्ण ने सब जो हम कामना करते हैं सब रिकॉर्ड में है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं खास करके भक्ति जब हम कर रहे हैं तो हमको खास करके विचार करना चाहिए कि मैं क्या कामना कर रहा हूं। प्रभुपाद कहते हैं बाय डिजायर वी केम टू दिस वर्ल्ड एंड बाय डिजायर वी कैन गो आउट। हम इच्छा करके कारण इस जगत में आए हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप। और इच्छा करने से ही हम इस जगत के पार जा सकते हैं, केवल सही इच्छा करने से। तो ये जो दोनों इच्छाएं थी रत्नावली की, वो रत्नावली ही बाद में पूतना बन के आई, उसकी दोनों इच्छाएं पूर्ण करें। चलो तुमको विष पिलाना है वो भी मैं ग्रहण कर लूंगा, तुमको दूध पिलाना है वो भी मैं ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार से कृष्ण की संहारिका शक्ति है, उसने विष को पराशन कर लिया, और कृष्ण की जो वात्सल्यमयी शक्ति है उसके कारण उन्होंने दूध को ग्रहण किया, और उसी के साथ उनके प्राण को भी प्राशन कर लिया संहारिका शक्ति ने। तो पूतना जो एक साधारण युवती के रूप में थी वो 6 योजन लंबी हो गई और आक्रोश करते हुए बाहर निकल गई, क्योंकि ऐसे दूध प्राशन करते समय प्राण निकल रहे हैं उसके, तो सारे मर्म में उसको वेदना उसकी अनुभव हुई, और बाहर आकर अपना जो विशाल रूप उसने धारण कर लिया, असुर रूप धारण कर लिया, और जाकर गिरी तो कहां गिरी, कंस के बगीचे पर गिर गई। और कहते हैं कि 6 योजन लंबी थी, तो इसका उत्तर भी बताते हैं क्यों 6 योजन लंबी हो गई। वो जो 6 दर्शन हैं, जो वेद व्यासदेव के दर्शन के विरुद्ध हैं, न्याय मीमांसा आदि, तो जब भगवान भक्ति देते हैं तो 6 के 6 दर्शन जो कुदर्शन है वो नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति में अंतराय वाले जो सारे दर्शन हैं, न्याय मीमांसा इत्यादि, कर्म मीमांसा न्याय, वो सारे दर्शन चूर्ण हो जाते हैं। तो 6 योजन पूतना के देह के अंदर। तो सारी गोपियां गोप उधर पहुंचते हैं, देखते हैं कि कृष्ण पूतना के इतने विशाल शरीर पर खेल रहे हैं, तो उसको तुरंत वहां से लेकर यशोदा मैया की गोद में दे देते हैं। तो यशोदा मैया सोचती हैं, अरे क्या होगा, मेरे कृष्ण सही तो हैं। तो यहां पे श्रील विश्वनाथाचार्य ठाकुर कहते हैं कि इसका मथित अर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं कि दो चीजें कहते हैं। पहली बात तो पूतना जिसने तीनों के बारे में बता रहे हैं, जो राक्षसी है, जो भगवान को विष पिलाने के लिए कुछ दे रही है, विष दे रही है, उसका उस और क्या दे रही है, किस भाव से दे रही है, भगवान को मारने के लिए, इन तीनों को भगवान ने ग्रहण करके भी उसको धात्री की गति दे दी। धात्री माने धात्री की जैसी, मतलब विश्वनाथाचार्य ठाकुर कहते हैं कि उसको वैकुंठ वृंदावन में धात्री का स्थान दिया गया, वृंदावन में नहीं, वैकुंठ वृंदावन करके एक जगह है जहां पे भगवान की सेवा ऐश्वर्य भाव में होती है कृष्ण की, तो वहां पे उसको स्थान दिया, क्योंकि वृंदावन में जाना है तो यशोदा मैया की, अगर वात्सल्य भाव में वृंदावन में जाना है तो किसकी अनुगति करनी होगी, यशोदा मैया की अनुगति करनी होती होगी, और पिता के रूप में करना है तो नंद महाराज की अनुगति करनी होगी, तब जाके व्रज में वात्सल्य भाव मिलेगा। पूतना जैसा करेंगे तो, वैसे तो अभी करेंगे तो कुछ कुछ नहीं मिलने वाला, हाँ द्वेष ही उत्पन्न होगा और नरक चले जाएंगे। लेकिन भगवान के अवतरण के समय भगवान विशेष कृपालु थे, इसलिए पूतना को जननी गति दे दी, मतलब वैकुंठ वृंदावन में उसको भेज दिया, सुख ऐश्वर्यतरा धात्री भाव देकर, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। लेकिन फिर भी मतलब असुर होकर भी इतना सब दे दिया, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हैं कि पूतना को अगर धात्री के जैसा स्थान दे दिया तो सोचिए, जो असुर नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, उसको क्या देंगे भगवान, अगर वो भगवान को कुछ देता है तो सोचिए भक्तों को क्या देंगे, तो सोचिए स्नेही भक्तों को क्या देंगे, तो सोचिए नित्य सिद्ध भक्तों को क्या देंगे। और फिर आगे कह रहे हैं, विष दिया तो भगवान ने ऐसा आदान प्रदान किया, तो सोचो बिना विष का कुछ दे दिया तो क्या होगा, फिर सोचिए जो भगवान को प्रिय है वो दे दिया तो क्या होगा। फिर आगे कहते हैं, भगवान को मारने के लिए दे दिया तो ऐसा हो गया, तो सोचिए उदासीन भाव से देती तो क्या होता, और मान लो भगवान को संतुष्ट करने के लिए देती तो क्या होता, कविमुतिक न्याय कहते हैं उसको। तो ऐसे भगवान अत्यंत कृपालु है, सबसे पहली उन्होंने लीला की, उसमें ही क्या दिखाया उन्होंने कि मेरी शरण लो, कृष्ण कृपा के सागर है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु है। तो कह रहे हैं कि सारी जो गोपियां हैं, जो वात्सल्य भाव वाली गोपियां यशोदा मैया के समकक्ष, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो कृष्ण की रक्षा करती है, कृष्ण के नाम जप करके, विष्णु के नाम जप करके कृष्ण की रक्षा कर रही है। और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, रक्षा शक्रुश्च शक्रुता द्वादशांगेषु नाम भी, 10-12 जगह पर तिलक करवा के, गोमय से तिलक करवा के, भगवान के नाम जप करके कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं। तो कह रहे ऐसे व्रज की नित्य सिद्ध जो व्रजांगनाएं हैं उनके संसार या संसार दुख का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि संसार दुख किससे आता है? देह गेह पुत्र धन आदि आसक्ति से आता है, लेकिन भक्तों की ये चारों किस लिए होती है? कृष्ण की सेवा के लिए होती है। ये गोपियां देखिए, इनके देह तो कृष्ण की सेवा के उपकरण है, उन्हीं का देह से निकला हुआ दूध कृष्ण प्राशन कर रहे हैं, इन्हीं के पति कृष्ण के पिता है, तो आसक्ति से बंधन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इन्हीं के घर में कृष्ण खेलते हैं और इन्हीं के कृष्ण उनके पुत्र हैं और इनके जो पुत्र हैं कृष्ण के सखा हैं, तो कहीं पे भी संसार बंधन का सवाल ही नहीं उठता। सदैव जो एक आदर्श गृह होना चाहिए उनका गृह है, एक आदर्श देह होना चाहिए उनकी देह है, एक आदर्श पति पुत्र होने चाहिए उनके हैं। तो इस प्रकार से हम श्रील विश्वनाथ श्री ठाकुर ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से अगर हर व्यक्ति अपने जीवन को, अपनी देह को, अपने सारे मनोप्रवृत्तियों को अगर कृष्ण की सेवा में लगाएं, तो उसके लिए भावबंधन हो ही नहीं सकता, उसके लिए केवल भाव बंधन होगा, कृष्ण के प्रति भाव की आदान प्रदान उसकी होगी। तो ये हमको इस पूतना लीला से, पूतना उद्धार लीला से समझ में आता है कि कृष्ण तो बड़े कृपालु हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार का अनुकूल संबंध रखने से केवल कल्याण ही कल्याण होगा हमारा, और इस जगत, इस संसार से संबंध रखने से हमारा अधिकाधिक पतन ही पतन होगा। संसार स्वपन मानो, विषय विपत्ति जानो, संसार स्वपन मानो, नरतनु भजनेर मूल। कह रहे कि ये संसार स्वप्न की तरह है, समझो। स्वप्न जिसकी तरह क्यों है? क्योंकि इतने सारे आप सोचिए मेरी उम्र क्या है, जो भी है, उतने साल ऐसे बीत गए पता ही नहीं चला, एक स्वप्न की तरह निकल गया ये, और आगे के दिन भी स्वप्न की तरह निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अरे अभी तो मैं बच्चा था, अभी मैं युवा हो गया, अरे अभी तो मैं मिडल एज हो गया, अभी मैं वृद्ध हो गया, अरे पता ही नहीं चला, अभी मर भी गया, नया देह भी मिल गया। सर स्वप्न की तरह है पूरा संसार, स्वप्न मानो। यहाँ पे एक ही सत्य है कि जो भी हरि भजन किया वही एक सत्य है, बाकी सब सपने की तरह झूठा है। झूठा मतलब ऐसा माइक नहीं कह रहे हम, ये भी भगवान की शक्ति ही है, लेकिन स्वप्न की तरह है। अगर उसको एंजॉय करने जाएंगे तो, उससे सुख पाने की कोशिश करेंगे तो स्वप्न की तरह, उसको ऊपर उपकरण के रूप में कृष्ण को अर्पण करने जाएंगे तो वो सत्य है, लेकिन उसको स्वयं की आनंद के लिए उपभोग करने जाएंगे तो वो स्वप्न है। तो ये हमको नरोत्तम दास ठाकुर, हमारे बड़े बड़े आचार्य समझा रहे हैं। नरतनु भजनेर मूल, मनुष्य शरीर जो है भजन के लिए ही मिला है, केवल मूल भजनेर मूल कह रहे हैं। आर सब हृदय शूल कह रहे हैं, बाकी जो भी हम बात करेंगे हृदय के अंदर धसा हुआ चाकू है समझ लीजिए, जो जल्दी जितना जल्दी निकले उतना अच्छा है। और जो भी कामना वासनाएं हैं वो हमको और भी बांधेंगे इस जगत को। एक ही कामना होनी चाहिए केवल, कि मैं कृष्ण को संतुष्ट कैसे करूं अधिकाधिक, तभी जाकर हमारे जीवन की क्या है सफलता उसमें है। तो यहीं पे हम रुकेंगे। हमारे आचार्यों ने इतनी सारी टीकाओं में हमको ये सब समझाया है, उसको प्रस्तुत करने का कुछ प्रयास, स्वल्प प्रयास हमने किया। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण लीला की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।